और अब रही थोड़ा ब्याह पढ़ाना और सिखा दो, हमारी जजमानी पुरोता ही चल जाएगी इतने में। भैया ये ठीक है, लेकिन आर्त जीना श्याम इत्यध्येयम् व्याकरणम्। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं हम पूजा पाठ में बैठने योग्य हो जाएं, ऋत्विक कर्म करने के योग्य हो जाएं, इसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। संस्कृत हमारी अपनी भाषा है, उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। एक पंडित जी थे, उनको एक अमरकोश का श्लोक याद था, उसी से सब पूजा कराते, देवी दुर्गा गणेश और सूर्य शिव सबकी पूजा एक श्लोक से ही करा दी। अमरकोश का मंगलाचरण याद था उनको, यस्य ज्ञान दया सिंधो रगाधस्या नघागुणा सेव्यता मक्षय धीरा सश्रिय चामृताय च, ये मंगलाचरण याद था, इसी से सब पूजा करा देते। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि, बस इस श्लोक को बोल देते, बाद में पीछे ये बोल। एक अच्छे पढ़े लिखे विद्वान आ गए, उन्होंने यजमान से कहा कि तुम्हारे पुरोहित जी तो मूर्खाधीरा है, कुछ नहीं जानते, अमरकोश से पूजा कराते एक श्लोक से। यजमान नाराज हो गया, उसने कहा पंडित जी आपने इतने दिनों तक हमको धोखे में रखा, अमरकोश से पूजा कराते हैं आप, हम आपकी इस पूजा से संतुष्ट नहीं है। बोले तो ठीक है कोई बात नहीं, आप संतुष्ट नहीं तो हम दूसरे ढंग से पूजा करा देंगे। हमारे पूज्य पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे। यजमान बोला हाँ आपके पिताजी तो बहुत बड़े पंडित थे पर आप पढ़े लिखे नहीं। अरे बोले सुन तो सही मेरी बात, हमारे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने हमको दो ही प्रकार के मंत्र पढ़ाए, एक अमरकोश का एक मरणकोश का, एक अमरकोश का दूसरा मरणकोश का, तो हम अपने यजमानों को अजर अमर बनाने के लिए अमरकोश से पूजा कराते हैं, अब तुमको उसकी जरूरत नहीं है तो हम मरणकोश का मंत्र बोलते हैं। सोई बेचारा भोला भाला यजमान कांप गया, बोले नहीं नहीं महाराज अमरकोश से ही करा। अरे पंडित जी आप क्या कर रहे हो, कितना बढ़िया अमरकोश से पूजा कराते हैं हम लोगों को अमर बनाने के लिए, आप क्या मरणकोश की पूजा शुरू करवा रहे हैं। अरे बोले इसको कुछ याद ही नहीं है, एक अमरकोश का श्लोक ही याद है, कुछ नहीं जानता है। पंडित जी बोले जानते कैसे, नहीं पूछो हमसे। बोले अच्छा एक श्लोक का अर्थ बताओ। शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांतये। अरे बोले इसका सीधा साधा अर्थ है दही बड़ा। अब तो महाराज वो वैयाकरण पंडित थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने आज तक विचार नहीं किया इसका दही बड़ा अर्थ कैसे होता। बोला भाई आपने तो विचित्र बात बताई, इसका दही बड़ा अर्थ कैसे होता। बोले इसका दही बड़ा अर्थ ऐसे होता है, शुक्लाम वरधरम सफेद दही की चादर ओढ़े रहता है, देवम चमकता हुआ, शशिवर्णम पूर्ण चंद्रमा के समान गोल गोल, और चतुर्भुजम चतुर लोगों का भोजन। चतुर लोग पूरी साग नहीं खाते, दही बड़ा जाए तो उसी से चिनाई कर लेते, और ऐसा दही बड़ा सज के सामने आ जाए तो प्रसन्न वदनम ध्यायेत, और पेट में पहुंच जाए तो सर्व विघ्नोपशांत, सुधा रूपी विघ्न की निवृत्ति हो जाती है। बोले भाई पंडित हो तो तुम बड़े चतुर, बड़ा विलक्षण अर्थ तुमने किया पर ये अर्थ नहीं है। बोले तो दूसरा सुनो क्या अर्थ है इसका। बोले इसका अर्थ है ब्राह्मण को दक्षिणा दे दो। दक्षिणा अर्थ कैसे हो गया। बोले सुनो शुक्लाम वरधरम, चांदी के कलदार चलते थे, शुक्लाम वरधरम एकदम सफेद चमकता हुआ चांदी का कलदार, देवम शशिवर्णम शरद पूर्ण चंद्र के समान, और चतुर्भुजम चार भुजाओं में बट जाने वाला, चार चुवन्नी का एक रुपया, चार चुवन्नी का एक रुपया, और ऐसी दक्षिणा सामने लेकर कोई प्रस्तुत हो जाए तो उसका ध्यान होते ही प्रसन्न मुख हो जाता है और पंडित जी की जेब में पहुंचते ही सर्व विघ्नोपशांतये, चूल्हा चक्की के सारे विघ्नों का शमन हो जाता है। वो महाराज जो वैयाकरण थे ना, उन्होंने कहा आप विजयी हुए, मैं आपके वैदुष्य के आगे पराजित हुआ, हाँ खूब करा। हमारे धर्मसम वाले गुरु जी ऐसी बहुत सी कहानियां सुनाते थे विद्यार्थियों को, पढ़ाते पढ़ाते कई बार जब उनके मन में आता बहुत सुनाते। संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए, हमारी अपनी भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। ऐसा ही रहा तो धीरे 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 पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और हमने सुना है यहां से अच्छी पढ़ाई बाहर होने लगी, भारत के बाहर देशों में संस्कृत की अच्छी पढ़ाई होने लगी। कौन सा लंदन में कौन सा विद्यालय एक्सफोर्ड है ना, कौन सा विद्यालय जो भी हो अंग्रेजी नाम हम बोल नहीं पाते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है बड़ा, तो वहां एक संत हैं बिहारी दास जी, वो पढ़ते हैं। उनका जन्म भी इंग्लैंड का ही है, भारतीय हैं, सरयू पारिण ब्राह्मण है, वो लोग धाम वाले महाराज जी के शिष्य। इतना अच्छा वैदुष्य है उनमें, युवा संत हैं, इतना बढ़िया वेद पाठ करते हैं, इतनी बढ़िया संस्कृत बोलते हैं, बढ़िया। तो उनका मन हुआ कि हम आकर के वहां ना पढ़े यहां पढ़े, तो दिल्ली में आकर के उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो उनको ये समझ में आया कि वहां के शिक्षा के स्तर से यहां का शिक्षा स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है, और वे फिर वहीं जाकर अभी भी पढ़ रहे हैं। हम माने ये भारतवर्ष के लिए प्रसन्नता की बात नहीं है, ये भारतवर्ष के लिए दुर्भाग्य की बात है, ये लज्जाजनक बात है कि यहां की भाषा की पढ़ाई यहां नहीं हो पा रही है, वहां के लोग पढ़ रहे हैं। और आज तो पढ़े लिखे लोगों ने ये जान लिया है, बाहर के लोगों ने, कि कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत है। हमने ऐसा सुना है, हम प्रामाणिक रूप से इस बात को जानते नहीं है, पर प्रामाणिक लोगों से सुना है हमने कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि संस्कृत भाषा का व्याकरण जितना सुंदर है, उत्तम है, वैसा सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करने वाला शब्द शास्त्र का अन्य कोई व्याकरण विश्व की किसी भाषा का नहीं। आप बताओ, दुनिया के किसी कोने में 18 भेद आकार के हों, कहीं नहीं। आ इत्तिष्टादश भेदाः, ये केवल व्याकरण शास्त्र कह सकता है, संस्कृत भाषा का व्याकरण कह सकता है कि एक अकार 18 प्रकार का होता है। आ इत्तिष्टादश भेदाः, इसलिए संस्कृत जरूर पढ़नी चाहिए, अवश्य पढ़नी चाहिए। हम तो महात्माओं से भी निवेदन करते हैं, महात्माओं को भी पढ़ना चाहिए, ब्राह्मणों को भी पढ़ना चाहिए। हम अपनी भाषा से विमुख होकर के और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखो, संस्कृत के नष्ट होने से संस्कृति नष्ट हुई, संस्कृत सुरक्षित होगी तो संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। पर हम जीवों के हित के लिए भोले बाबा ने हिंदी में काव्य रचना की आज्ञा दिया। इसको गोस्वामी जी से शंकर जी ने कहा कि गोस्वामी जी, आप अपने मन में यह विचार न करें कि हमारा ग्रंथ भाषा का ग्रंथ है। और उस काल में बड़े बड़े विद्वान थे, संस्कृत ऐसी अवस्था आज की जैसी नहीं थी, तो ऐसा आप न समझें कि ये हिंदी भाषा का ग्रंथ होने के कारण ये विद्वानों की समाज में इसका आदर नहीं होगा, ऐसा आप अपने मन में बिल्कुल न सोचें। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपकी यह भाषा ग्रंथ की रचना साम वेद की ऋचाओं के समान समादर प्राप्त करेगी। यह आशीर्वाद भगवान काशी विश्वनाथ ने गोस्वामी जी को दिया है, और ऐसा आशीर्वाद दे करके वे अंतर्धान हो गए। इसको बाबा श्री वेणी माधव दास जी ने मूल गुसाई चरित में इस घटना का वर्णन किया है। दिन में जितनी रचना रचते,
दिन में जितनी रचना रचते,
निशी माही संचित ना बचते,
निशी माही संचित ना बचते,
यह लोप क्रिया प्रद्युस करे, करिए सो कहा नहीं बूझी परे। अठे दिन संबुदिये सपना, निज बोली में काव्य करो अपना। उचटी निधियां उठी बैठ मुनि, उर गूंज रही सपने की धुनी। प्रगटे शिव, शंकर जी साक्षात प्रगट हो गए। प्रगटे शिव संग भवानी लिए, मुनि आठ अंग प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किया। शिव भाषेउ भाषा में काव्य रचो, सुरबानी के पीछे तात न परो। पचो सब कर हित होई सोई करिए, अरु पूर्व प्रथा मत आचरिए। तुम जाए अवधपुर बास करो, तहां निज काव्य तहां ही निज काव्य प्रकाश करो। और आशीर्वाद दिया भोले बाबा ने, मम पुण्य प्रसाद सो काव्य कला, हुई है सम साम ऋचा सफला। सामवेद की ऋचाओं के समान यह आदरणीय होगा। और सामवेद के संबंध में कहा जाता है कि गाया जाता है, और आज दुनिया में रामचरितमानस जितनी लयों में जितनी धुनों में गाया जाता है, रामचरितमानस की चौपाई शायद इतना अधिक अलग अलग प्रकार की धुनों में लयों में और कोई ग्रंथ गाया नहीं जाता होगा। हर हांकने वाले से लेकर बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ भी रामचरितमानस गाते हैं। निरक्षर भट्टाचार्य से लेके महामहोपाध्याय तक रामचरितमानस की पंक्तियों का रसास्वादन करते हैं। ऐसी अद्भुत रचना है। गोस्वामी जी महाराज ने भी मानस जी में इस बात को कहा है, सपने हूं सांचे ही मोही पर, जोहर गौरी पसाऊ तो फुर होई जो कहूं सब भाषा भणित प्रभाव। गोस्वामी जी महाराज श्री अवध पधारे। अवध में जिस दिन महाराणा उदय प्रताप सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे, उदय प्रताप सिंह जिनकी रक्षा संभवतः पन्नाधाय ने की थी ना, उदय प्रताप सिंह की रक्षा, कुंवर उदय की, पन्नाधाय नहीं। शुरु गुरुकुल में हम लोग नाटिका देख करके आए, तो उसी दिन हिंदू रजवाड़ों में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। ये बात संवत 1631 की है, जब उदय महाराजा उदय सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर बादशाह से सम्मानित होकर के बैठे। उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवध पहुंचे हैं और सरयू स्नान करके पुलन में विचर रहे थे। मन में विचार कर रहे थे, कहीं ऐसी कोई जगह उपलब्ध हो जहां एकांत भी हो शांत भी हो, जहां रहकर भजन साधन करें और रामचरितमानस का प्रणयन करें। तो विचार कर ही रहे थे, तब तक एक महापुरुष आपके निकट आए और उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी महाराज, यदि आपको श्री अयोध्या जी में वास करने की इच्छा है तो श्री हनुमानगढ़ी के निकट एक बड़ा रमणीक स्थल है, आप हमारे साथ चलकर उस स्थल का दर्शन कर लीजिए। यदि आपका मन रुचे, मन में अच्छा लगे, तो आपकी वहां व्यवस्था हो जाएगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वहां पधारे। वहां उन्होंने देखा, आज भी वो जगह है अयोध्या जी में जहां मानस जी की रचना हुई है। गोस्वामी जी वहां पहुंचे, कई बट वृक्ष वहां लगे हुए थे। उन वृक्षों के बीच में एक विशाल बट वृक्ष था, उस पर एक सुंदर वेदिका थी और अग्नि के समान तेजस्वी मुनि सिद्धासन से बैठे थे। गोस्वामी जी ने उन मुनि को देख करके दंडवत किया और विचार किया कि ऐसे तेजस्वी संत भी यहाँ हैं और यह बट वृक्ष भी हैं, सुंदर स्थल है, यही हमें निवास करना चाहिए। जैसे ही उन संत को प्रणाम करके उनके निकट पहुंचे तो वे महात्मा उठ के खड़े हो गए और उन महात्मा ने कहा कि सद्गुरुदेव भगवान के धाम जाते समय हमें आज्ञा दे करके गए थे कि तुम यहीं निवास करना, कुछ समय पश्चात महर्षि वाल्मीकि के अवतार तुलसीदास जी यहां आएंगे और हनुमान जी की कृपा से वे यहीं बैठकर रामचरित की रचना करेंगे, तो यह कुटी और बगीचा उन्हीं को सौंप करके तुम मेरे पास चले आना। गोस्वामी जी ने पूछा, महाराज आप यहां कब से विराजते हैं? बोले, मैं यहां त्रेता युग से ही यहां विराजमान हूं इस स्थल पर। गुरु जी कहे थे कि तब तक तुमको यहां रहना है, हम कुछ कहें या कुछ सुने या कोई साधन भजन करें, ध्यान करें, तो उसमें स्थल की भी एक अपनी महिमा होती होती कि नहीं। अब गीता वाटिका के परिसर में बैठकर के चर्चा करने का कुछ एक अलौकिक ही सुख मिलता है यहां बैठकर, पता नहीं क्यों हमको ऐसा अनुभव होता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम अमुक बात कहेंगे, और जब जब गीता वाटिका में आकर बैठते हैं तब तक जो कहना चाहते हैं वो कभी निकलता नहीं, और पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। इसलिए हम तो रोज के रोज बाबा से कह देते हैं, जो कहवाना चाहो सो कहवा लो। स्थल की महिमा, कुछ ऐसे स्थल भी होते हैं जहां जाते ही चित्त एकदम शांत हो जाता है। कल श्री नारायण भैया जी बता रहे थे कि श्रीपाद बाबा यहां पधारे और जगह जगह कुंज में वे विराज करके भजन करते, और बार बार कहते, भैया ये स्थल जागृत स्थल है, ये जागृत स्थल है। स्थल कैसे जागृत होता है? निष्काम संतों के भजन से स्थल जागृत होता है, महात्माओं के भजन साधन के परमाणु वहां व्याप्त होते हैं। आप सोचिए, जो त्रेता से लगातार कोई महात्मा प्रतीक्षा में यहां बैठे हों, तप कर रहे हों, एक तो अयोध्या जी का स्थल, फिर ऐसा एकांत स्थल जन सम्मर्द से वर्जित, और फिर वहां ऐसे तपस्वी ऋषि विराजमान हो, तो स्थल कैसा होगा? बोले, हमारे गुरु जी का आदेश पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत योग बल से अपने शरीर में अग्नि प्रकट की, और देखते देखते ही उनका शरीर योगाग्नि में जलकर भस्म हो गया, और वे ऋषि अपने गुरुदेव की सेवा में भगवान के नित्य साकेत पधारे, भगवान की सन्निधि में पहुंच गए। गोस्वामी जी महाराज वहीं विराजने लगे, और प्रसन्न होकर के उन्होंने भगवद इच्छा से संवत 1631 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष श्री रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन, शुभ योग लग्न ग्रहवार तिथि नक्षत्र आदि सब एक साथ अनुकूल हो गए, एकत्रित हो गए। यहां तक लिखा है कि त्रेता में श्री रामावतार के समय जैसा ग्रह गोचर उपस्थित हुआ था, ठीक वही नक्षत्र, वही लग्न, वही सारा सुयोग एक साथ एकत्रित हुआ। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जिस मुहूर्त में त्रेता में राम जी ने अवतार लिया था, राम जी ने सोचा, भैया त्रेता में तो काम बन गया, त्रेता के लोगों की भलाई तो हो गई, लेकिन कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो राम जी ने पुनः अवतार लेने का संकल्प किया, इसलिए वही मूर्त उपस्थित हुआ, और ग्रंथ प्रभु के श्री विग्रह हैं, श्री राम जी का कलिकाल में रामचरितमानस के रूप में पुनः अवतार हुआ। इसलिए जब तक श्री रामचरितमानस धरती पर है, तब तक भगवान के भक्तों के लिए कलयुग नहीं है। जब तक श्री रामचरितमानस है, जब तक श्रीमद् भागवत है, जब तक श्री गिरिराज जी हैं, तब तक कलयुग कहां है? हां, जो भगवान से विमुख प्राणी हैं, सत्संग से विमुख प्राणी हैं, उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था, उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था। पर भले ही हम लोग कलिकाल में उत्पन्न हुए हैं, पर हम लोगों के लिए कलयुग नहीं, हमारे लिए तो ये समय सतयुग से बढ़ के है। कितना बढ़िया है, भगवान के मंगलमय नाम रूप गुण लीला की चर्चा करके हम लोग अपना कालक्षेप कर रहे हैं। बस भगवान से प्रार्थना है, ऐसी ही कृपा बनाए रखें, हम लोग भगवान के मंगलमय नाम रूप यश लीला का स्मरण करते रहें। उसी दिन गोस्वामी जी राम घाट में यमुना सरयू जी का स्नान करके लौट के आए थे और ध्यान कर रहे थे। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले प्रकट हुए और हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी महाराज, ग्रंथ के लेखन से आज से उत्तम कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए ठीक मध्यान्ह अवजित मुहूर्त में जो घड़ी राम जी के प्राकट्य की है उसी घड़ी से ग्रंथ का लेखन आरंभ करना है। यह आज्ञा देकर के हनुमान जी महाराज चले गए और इसके बाद आज का प्रभात एक अद्भुत प्रभात था। हनुमान जी के अंतर्धान होने के पश्चात शिव पार्वती प्रकट हो गए। बस निर्विघ्न रूप से रामचरितमानस की रचना करो। फिर बाणी विनायक प्रकट हुए, सरस्वती जी प्रकट हुई और गणेश जी प्रकट हुए, फिर भगवान शेष प्रकट हुए, फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए और अंत में देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। माने भैया जी ये समझो कि सवेरे से लेके और जब तक वो मुहूर्त नहीं आ गया तब तक लगातार गोस्वामी जी को दिव्य दर्शन ही हो रहा है। सबने मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया और फिर गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा गोस्वामी जी ने काव्य की रचना का आरंभ किया है। सबकी वंदना की है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय श्री रामचरितमानस का प्रणयन आरंभ किया है।
संबत सोरह से इकतीसा, संबत सोरह से इकतीसा, संबत सोरह से इकतीसा, संबत हरि पद धर सीसा, करो कथा हरि पद धर सीसा। जेहि दीने राम जन्म श्रुति गावई, जेहि दीने राम जन्म श्रुति जन्म श्रुति गावै, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल कहाँ चली आवै, तीरथ सकल कहाँ चली आवै, बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित विकासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा।
यह दिव्य ग्रंथ लिखा 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में अगहन सुधी पंचमी को, उस दिन भी मंगलवार था। और राम जी एक विशेष बात बतावें, त्रेता में राम जी के विवाह के जो ग्रह नक्षत्र उपस्थित हुए थे वे उस दिन उपस्थित हुए थे, विवाह के भी वे सारे मुहूर्त एकत्रित हुए थे। तो राम जन्म के दिन प्रकट हुआ और राम विवाह के दिन ग्रंथ पूर्ण हुआ। और महाराज जैसे ही ग्रंथ पूर्ण हुआ, जैसे ही ग्रंथ पूर्ण हुआ अंतिम दुआ, कामि नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ महिराम। आहा, उसी समय ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्तिनो मानवा वर्णानाम अर्थ संघानाम और मानवा, दह्यन्ति नो मानवा। वम इति अमृत बीजम, वम अमृत बीज है।
सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे।
ग्रंथ की पूर्णता पर कीर्तन होना चाहिए था ना, इसलिए लाइट चली गई। और महाराज जैसे ही ग्रंथ पूरा हुआ उसमें आकाश में देवताओं ने नगाड़े बजाए और पुष्प की वर्षा हुई। रामचरितमानस जू की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तत्काल गणेश जी सामने प्रकट हो गए और महाराज गणेश जी से बड़ा लिखने वाला कौन है, तुरंत वो गोस्वामी जी के आसन पर विराजमान हो गए और उन्होंने 5 प्रति तुरंत लिख ली, प्रतिलिपि रामचरितमानस की 5 प्रतिलिपि तैयार की गणेश जी ने और अंतर्धान हो गए। गोस्वामी जी ने कहा महाराज कहाँ ले जा रहे हो, बोले ब्रह्मा जी को 1 प्रति देना है, शिवलोक में 1 प्रति देना है, वैकुंठ में 1 प्रति देना है और महाराज देवलोक में 1 प्रति देना है, फिर एक हमारे पास भी रहेगी। इस तरह से 5 गिनती की प्रतियां हैं लेकर चले गए। ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ है। और इसके बाद सबने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया है। देखो गोस्वामी जी ने कोई प्रचार नहीं किया कि वो एक गोष्ठी आयोजित करते, विद्वत गोष्ठी बुलाते, भाई हमने भी एक पोथी लिखी है, फिर उनको कुछ भेंट दक्षिणा रुपया कपड़ा गमछा चद्दर देते, फिर बड़े बड़े प्रशंसा पत्र लिखे जाते, ये सब काम गोस्वामी जी ने नहीं किया। क्योंकि स्वांतस सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, पायो परम विश्राम, परम विश्राम मिल गया, अब उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रह गई। हाँ, ग्रंथ रचना के बाद ये मन में अवश्य था कि कोई एक भगवान के प्रेमी अनुरागी संत इसका इसको सुन लेवें, श्रवण कर लेवें और वे सुनकर संतुष्ट हो जाएं तो मुहर लग जाएगी। देखो कितनी ऊंची बात है, मर्यादा की बात। आशीर्वाद प्राप्त ग्रंथ है, रचना करने वाला भी कोई सामान्य नहीं है, पर महत्पुरुषों में मर्यादा का कितना ख्याल होता है हमारे जैसे लोगों को सिखाने के लिए कि आगे कथनचित कोई ऐसा होवे जो कुछ लिखने में समर्थ होवे तो भी उसे यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमने जो कुछ लिखा है सब ठीक है, हम जो कह रहे हैं सब ठीक है। यदि कोई भगवान के प्यारे भक्त कह दें कि हाँ तुमने जो कहा वो ठीक है तो ठीक है, और नहीं तो सब बेठीक है। संतों को जरूर सुनाना चाहिए क्योंकि उनकी कसौटी में जो उतर गया खरा बस उसका काम बन गया। और महात्मा होते विचित्र हैं। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी एक बार हमसे बोले, परम सिद्ध महापुरुष थे, अद्भुत अंतर्यामित्व और त्रिकालदर्शी महात्मा, आप लोगों में से शायद सब ऐसे नहीं होंगे जो हमारी बात पर पूर्ण विश्वास करें, पर हमारा हृदय यह स्वीकार कर रहा है, वे ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि वे अपने संकल्प से किसी को कुछ भी दे सकते थे, इतने समर्थ महात्मा थे। दास के ऊपर बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी, पर लीलाएं सब अटपटी थी, सबकी समझ में नहीं आती। हमसे एक दिन बोले, राजेंद्र दास तुम कथा बांचने लग गए हो। कि हाँ महाराज जी, तो हमको तो तुमने भागवत जी की कथा सुनाई नहीं, महाराज जी आप आज्ञा करें। बोले भाई हम गरीब साधु एक लंगोटी में बैठे हैं, क्या दक्षिणा लोगे? अब बताओ हमारे गुरु जी, उनसे हमने थोड़े दिन सितार भी सीखा, क्योंकि वे संगीत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे और योगी तो थे ही। तो अब हम तो बहुत एकदम लज्जा में गड़ गए में कि महाराज जी आज तक न तो सीधे सीधे और ना ही प्रकारांतर से भगवान के कथा कीर्तन के माध्यम से कभी किसी व्यक्ति से न एक रुपया न एक मुट्ठी अन्न लेने का संकल्प किया गया है। एकदम आपकी कृपा से निष्काम निर्लोभ भाव से ही भगवान की कथा का आश्रय लिया गया है। तो बोले हाँ, वो इसलिए हमने जानकारी कर ली कि बहुत से वक्ता पहले ही तय कर लेते हैं। हाँ, मानो उनकी उनका यह व्यंग विनोद उसने यह प्रेरणा दे दी कि अच्छी बात है, ये तुम्हारी अच्छी बात है, ऐसे चक्कर में पड़ना नहीं। महाराज जी बोले, बेचहि वेद धर्म दोहिले ही पिशुन पराय पाप कह दें। ये वेद का बेचना ही है, कथा कीर्तन को निश्चित करके तय करके और उससे राशि प्राप्त करना, ये उसका विक्रय है, बहुत अच्छी बात है। रुदायन हमारे ब्रज में सिद्ध स्थल है, हमारे पूर्व संत वहां भजन करके सिद्ध भए, वहां हमको कथा सुनने की इच्छा है, कथा सुनाओगे? यहां सुनाएंगे। ले गए महाराज जी कथा सुनाने के लिए, लोग गए वहां, गांव के बेचारे ब्रजवासी, ब्राह्मणों का गांव है, तो गांव के लोगों ने अपने ढंग की सजावट करी, गांव में जैसे होता है, चौकी सजा दी, नई नई साड़ियां मंच के चारों ओर ऊपर साड़ियां लटका दी, बढ़िया बिचारों ने सजाया। महाराज जी ने देखते ही सब उजड़वा दिया, आए कथा शुरू होनी है, और बोले ये क्या है? बोले सजावट है, उनकी भाषा बोल रहे हैं, आप लोग अन्यथा मत समझना। है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान घोर कलयुग, बाल ब्रह्मचारी साधु लुगाइयों के घांगरे के नीचे बैठ के कथा कहेगा, है तेरी जय रे तेरी, साड़ी धोती के बीच में बैठ के कथा, है तेरी जय तेरी। बुद्धि बिगड़ गई, हटाओ सब, हटाओ सब, उतरवा दिया। हमारा एक गद्दा लगा था, गद्दा भी उतरवा दिया, नहीं 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 नहीं, गद्दा नहीं, हटाओ, कंबल शुद्ध होता है। अब महाराज कोई कंबल आए तो पुराना कंबल, बोले किसी के उपयोग को ना उपयोग किया हो, नहीं नहीं हटाओ। अब महाराज पूरी चौकी पर आसन तक नहीं, कथा कहो तो महाराज जी का एक आसन था जिसपे वे खुद विराजमान रहते थे, छोटा सा आसन, इतना बड़ा आसन होगा, वे उसी पर लेट जाते थे, खाली इतनी पीठ आ जाती थी और तकिया के तरफ जटाएं आ गई और पैर जमीन में ही रहते थे, एक अचला एक लंगोटी एक ही साफी में जीवन भर निर्वाह किया, वो फट जाती तो दूसरी बदलने के लिए दूसरी लंगोटी नहीं रखते, इतने फक्कड़ महात्मा। तो हमसे बोले इस पे बैठ जाओ, ये आसन पवित्र है। महाराज जी आपके आसन पर कैसे बैठे? अरे बोले कोई बात नहीं, व्यास पीठ पे बैठने वाला व्यक्ति भगवत तुल्य होता है, व्यास नारायण होते, बैठ जाओ कोई बात नहीं। अरे मैं कहता हूं बैठ जाओ। अब उनके सामने ना करना भी हालत खराब, तुरंत नरसिंह भगवान के आवेश में आ जाते थे। तो उन्होंने अपना आसन अपने हाथ से बिछा दिया, बैठ इस पे, कह कथा, बैठ गए। अब पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि पीठ बनाना है, तो क्या होंगे पीठ पेठ बना के क्या होगा? महाराज कथा में तो ये सब जरूरी है, नहीं यहां राधा गोपाल जी बैठे हैं, सब तीर्थ सब देवी देवता इनके भीतर बैठे हैं, धर दो एक मटका में पानी भर के धर दो, जिसको कथा सुनने की इच्छा हुई इसी कलश में आ जाएगा, बोल दो सब इसी में आ जाओ। महाराज ने घड़ा रख दिया, पत्ता रख दिए, गंधाक्षत हल्दी चावल चढ़ा दिया, हो गई पूजा। कहो कर विरक्ति विरक्ति ठाट की कथा कहने का अवसर मिला। 8 घंटे रोज कथा कहते, 4 घंटे एक बैठक में सवेरे, 4 घंटे शाम, और महाराज जी ध्यानस्थ होकर के कथा सुनते धूनी घर में बैठ करके। एक वहां के पुलिस अधीक्षक SP वो आए एक दिन कथा में, तो लोग गांव के लोग उन्होंने ऑफिसर अधिकारी हैं तो महाराज के पास बिठा दिया। महाराज बोले नहीं उनसे कुछ भी, चुपचाप बैठे रहे, अपने धन में ध्यान में बैठे रहे। कथा पूरी हो गई, लोगों ने कहा महाराज ये हमारे यहाँ के SP साहब हैं। तो महाराज बोले क्या करें, बाजे बजवाएं कि मंगल कलश धरा में, क्या करें, भले आए हमारी कथा में विक्षेप कर दिया, क्या बढ़िया आनंद से बैठे थे, आए कि यहीं बैठ गया, है तेरी जरे तेरी। बोला हाँ महाराज हमें दूर ही बैठ जाना चाहिए। विचित्र महात्मा थे, मन में कोई छिपाव दुराव नहीं था, जो कहना वाणी मुंह से कह देना, साफ कह देना। और उस कथा में आप आश्चर्य माने, बहुत सुख मिला, बहुत सुख। फिर कथा सुनने के बाद महाराज जी कहते हैं हाँ ठीक है कभी, अब खूब कहो। बोले हमें और कोई बात नहीं, हमारी कोई कामना नहीं थी, हम केवल सुनना चाहते थे एक बार कि तुम क्या कहते हो, अब ठीक है खूब कहो। तो हमको स्मरण में आ जाता है ऐसे ही महापुरुष अपनी पंडिताई दिखाने के लिए नहीं, उन महापुरुषों की कृपा प्राप्त हो जाए इसके लिए उनके चरणों में बैठकर भगवत चर्चा करनी चाहिए। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, पूज्य बाबा महाराज की कृपा हम सबको प्राप्त हो जाए उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो राम जी की दया से गोस्वामी जी भी विचार करने लगे कि कोई ऐसे रसिक प्रेमी सिद्ध संत हो, उन्हें सबसे पहले मैं स्वयं इस ग्रंथ को आनुपूर्वी सहित बांच करके सुनाऊं, यदि वे संत कह दें कि हाँ ये ठीक है तो ठीक है, अन्यथा तो ठीक है, लोग करते ही हैं कुछ ना कुछ। उसी समय अवध में मिथिलापुरी के एक संत श्री रूपारुण स्वामी जी नाम के मिथिला के संत आए थे, जो निरंतर श्री विदेहराज जनक जी के भाव में भरे रहते थे। 6 अंगों के सहित वेदादि शास्त्रों के उद्भट विद्वान थे और ब्रह्म विद्या के तो मानो आचार्य ही थे, महान समर्थ योगी विद्वान थे। वैदिक सदाचार संपन्न उनका जीवन था और वे मिथिलेश जी के भाव में निमग्न रहते थे और श्री जानकी जी के प्रति उनका बेटी का भाव सिद्ध था, सिद्ध भाव था, जानकी मेरी बेटी है। श्री गोस्वामी जी महाराज उनका दर्शन करने गए और हाथ जोड़कर कहा भगवान, भगवत प्रेरणा से आप संतों की कृपा से कुछ रचना हुई है, आपकी अनुमति होए तो आपके ठाकुर जी के चरणों में बैठकर हम सुनाना चाहते हैं। रूपारुण स्वामी जी ने सहर्ष अनुमति प्रदान की और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम नवान्न पारायण स्वयं रूपारुण स्वामी जी के चरणों में बैठ करके सुनाया। और रूपारुण स्वामी जी उस रामचरितमानस का श्रवण करके उनका रोम रोम खिल उठा, उनका हृदय भराया, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली और उन्होंने कहा तुलसीदास जी मेरा रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है, यह ग्रंथ जीवों के परम हित के लिए ही प्रकट हुआ है, इससे सभी जीवों का हित होगा, मैं आशीर्वाद देता हूं इस पवित्र ग्रंथ का जो भी आश्रय लेंगे वे सहज ही भवसागर से पार उतर करके प्रभु चरण कमलों को प्राप्त करेंगे, यह आशीर्वाद श्री रूपारुण स्वामी जी ने दिया। और लिखा है महाराज जी कि इस घटना के बाद गोस्वामी जी को प्रचार करना नहीं पड़ा, रूपारुण स्वामी जी को श्रवण कराने के बाद दिगंत में रामचरितमानस की कीर्ति गुंजित होने लगी। संडीले के नंदलाल गोस्वामी जी के शिष्य दयालदास जी महाराज भी आए और वो भी रामचरितमानस की प्रतिलिपि करके ले गए। और इसके बाद यमुना तट पर 3 वर्ष तक महाभाग रसखान जी को इन्होंने, श्री दयालदास जी महाराज ने रसखान जी को भी 3 वर्ष तक रामचरितमानस सुनाया। और स्वयं रसखान जी ने रामचरितमानस की प्रशस्ति अपनी काव्य में लिखी है। जिन रसखान जी का ये पद्य अत्यंत प्रसिद्ध है, देखो दिरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, वे रसखान जी जैसा नाम वैसा ही उनका स्वरूप, रस की ही खान थे रसखान जी। आहा, रसखान जी लिख रहे हैं गोस्वामी जी के रामचरितमानस के संबंध में। सुर तरु लता में चार, ध्यान से सुने, सुर तरु लता में चार फल हैं फलित के धो, काम धेनु धारा सम नेह उपजावनी। लगता है कल्प वृक्ष की लता में क्या ये चार फल लगे हैं, अथवा कामधेनु की धारा ही मानो प्रकट भई है। कैधो चिंता मनन की माल उर शोभित, विशाल कंठ में है धरे हैं ज्योति झलकावती। प्रभु की कहानी ते गुसाई की मधुर वाणी, श्री गुसाई की मधुर वाणी, मुक्ति सुखदानी रस खान मन भावती। रस खान के मन को अच्छी लगती है। खाण की खिजावनी सी, कंद की कुठावनी सी, सीता की सतावनी सी, सुधा सकुचावनी। अमृत को भी संकोच में डाल देने वाली है। इसके बाद तो तमाम लोग आने लगे और वो छापा खाने का जमाना नहीं था। मानस जी की अनेक प्रतियां प्रतिलिपि होकर के तैयार होने लगी। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री कनक भवन में विराजमान थे। युगल सरकार श्री सीताराम जी का दर्शन करने गए और उस समय एक श्री मुक्तामणि दास जी नामक महात्मा, वे शयन आरती के समय शयन का पद गा रहे थे। गोस्वामी जी ने सुना तो गोस्वामी जी भाव व्योल हो गए। देखो, वे महात्मा मुक्तामणि दास जी महाराज, वे तो संगीत के मर्मज्ञ विद्वान भी थे और उसके साथ ही साथ भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग भी था। तो केवल संगीत का ज्ञान हो, संगीत की कला हो और उसमें गाने वाले के हृदय का प्रेम न हो, भाव न हो, तो उसमें कलाकारी तो खूब दिखाई पड़ेगी लेकिन वह हृदय को प्रेमालादित करने में समर्थ नहीं होता। और भले ही किसी को विशेष ज्ञान न हो पर अनुराग भीतर हो तो अपने आप उसमें माधुर्य आ जाता है। ये अनुरागी महात्मा, अनुरागी महात्मा, प्रेमी महात्मा, भाव में स्थित होकर के गा रहे हैं तो उस भाव का प्रभाव सबके ऊपर हो गया और गोस्वामी जी तो परम भावुक महात्मा है, उनके ऊपर विशिष्ट प्रभाव हो गया। सैन करहु रघुबीर प्यारे, हो पठई आई कौशल्या, बड़े भूप उठी सदन सिधारे। सैन करहु रघुबीर प्यारे, जुगल जाम जामिनी बीतीत, नैनन नींद भरे दत नारे। प्रमुदित शरद को कनद मानो, प्रमुदित शरद को कनद मानो, मंद समीर
मले कर धारे, रतन जटित मणिमय मंदिर में तहां रुचि शोभित जनक सुतारे, शयन करहु रघुवीर प्यारे। मग जोवत सहचरी सिया की,
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 नैन उचित सब सोज सवारे,
नैन उचित सब सवारे,
शयन करहु रघुवीर प्यारे,
शयन करहु रघुवीर प्यारे।
सखियां नेत्रों के इशारे से ही कह रही हैं स्वामिनी जी से, सेज तैयार है, बस पौड़वे की दे रहे।
अति आलस जूत गए हैं भरत जू,
अति आलस जूत
गए हैं जू, लखन लाल रिपुहन उजियारे,
लखन लाल रिपुहन उजियारे,
सुनत सकल जयपाल विदा करे,
सकल जयपाल विदा करे,
सुनत सकल जयपाल विदा करे,
सुनत सकल जयपाल विदा करे,
उठे दास मुक्ता जब बारे,
उठे दास मुक्ता,
करहु रघुवीर प्यारे,
शयन करहु रघुवीर प्यारे,
शयन करहु रघुवीर प्यारे,
शयन करहु रघुवीर प्यारे।